से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओ ओ ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओ ओ सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओ जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओ ओ ओ ओ।
Thank you. शांति, ओम शांति। सत गुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज का दिन बहुत विशेष है। आज हिंदू न्यू ईयर है। आज से चैत्र मास शुरू हो रहा है और आज से नवरात्रि भी शुरू हो रही है। और देखो आज ही बारिश शुरू हुई, थोड़ी ठंडी हो जाएगी। छाता तो कोई लाए नहीं होंगे, बिन मौसम बारिश है। अभी तो 2026 क्या क्या नए रंग लाएगी कुछ पता नहीं है, लेकिन हम बच्चों को तो सदा तैयार रहना है। जो भी हो, बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा होके देखना है। तो बाबा की आज की मुरली है फॉलो फादर। शिव बाबा को याद करो और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, जिसको बाबा कई बार कहते हैं सी फादर एंड फॉलो फादर। सी फादर माना शिव बाबा को याद करो, उनको ही देखो, वही मेरा माशूक है, मैं आत्मा उसकी आशिक हूं। और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। तो जो गृहस्थी है, परिवार में रहते हैं, वो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें। और जो कुमार और कुमारी है वो किसको फॉलो करें? हाँ, मम्मा को फॉलो करें। तो मम्मा तो कुमारी थी और ब्रह्मा बाबा ने तो लौकिक में पूरा परिवार बनाया था। बच्चे थे, पोतरे दोतरे सब थे, धंधा व्यापार सब कुछ था। लेकिन कैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना जीवन शिव बाबा को दिया, कैसे ब्रह्मा बाबा ने हर कदम पर श्री मत का पालन किया, तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे बच्चों को भी करना है। तो कोई ये बहाना नहीं दे सकता है, मैं तो गृहस्थी हूँ, मेरे पर तो बहुत बोझ है। ब्रह्मा बाबा पर कितना बोझ है, लेकिन ब्रह्मा बाबा पूरा फॉलो करते शिव बाबा जो श्रीमत देते, और मम्मा भी पूरा फॉलो करती है जो श्रीमत उनको मिलती है। तो हमारे आगे ये दोनों एग्जाम्पल है, मम्मा बाबा। तो उनको देखो, उनको शिव बाबा को याद करो और मम्मा बाबा को फॉलो करो। तो आज की मुरली इसी पर है, इसलिए बाबा ने बच्चों को सावधान भी किया है, कदम कदम पर सावधान रहना है, क्योंकि माया का अपोजिशन बहुत है। माया किसी को भी छोड़ती नहीं है, तो कैसे माया से सदा बच के रहना है वो भी बाबा बताते हैं। नहीं तो अंत में क्या होगा, ट्रिब्यूनल बैठेगी। ट्रिब्यूनल क्या होती है? जब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक जज तो नहीं देगा निर्णय, तो वो बेंच होती है कई जजों की, उन सब की भी राय ली जाती है और जो बहुमत हो उसी अनुसार निर्णय लिया जाता है। तो ट्रिब्यूनल में कौन होंगे? दादी जानकी हमेशा कहती थी मैं ट्रिब्यूनल में होंगी, ट्राइब्यूनल। और उसमें धर्मराज के साथ मैं भी जरूर होंगी। तो हमारी अष्टरत्न वो तो जरूर उस ट्रिब्यूनल में होंगे। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को बहुत सावधान कर रहे हैं। तो आज की मुरली पूरी धारणा की मुरली है, सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 19/3/2026 है। मीठे बच्चे, जैसे बाप दादा दोनों निरअहंकारी है तो फॉलो फादर करना है ना, तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों निरअहंकारी है, देही अभिमानी है, ऐसे फॉलो फादर करो, ब्रह्मा बाप समान निरअहंकारी बनो। क्या विशेषता थी ब्रह्मा बाबा की, हमेशा ब्रह्मा बाबा कहते थे, यही समझो मैं नहीं सुना रहा हूँ, शिव बाबा सुना रहे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा नहीं सुना सकते, लेकिन हमेशा ये समझो शिव बाबा सुना रहे। सुनाई दे रहा है पीछे वालों को, सुनाई दे रहा है, अभी क्या करेंगे, नहीं ज्यादा बाहर बढ़ा नहीं सकते आवाज, क्योंकि आवाज गूंजेगा और ये पूरा ऊपर से उखड़ा हुआ है तो इसीलिए और भी गूंज रहा है, तो जितना है उतना ही सुन सकोगे। तो मीठे बच्चे, जैसे बाप दादा दोनों निरअहंकारी है, देही अभिमानी है, ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। प्रश्न है, ऊंच पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखनी जरूरी है? हम सब चाहते हैं कि हम ऊंच पद पाए, लेकिन ऊंच पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखनी है, किन बातों में खबरदार रहना है तब ऊंच पद पा सकेंगे? उत्तर, ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख न हो। कर्मणा वाचा में तो देना ही नहीं है दुख, लेकिन मनसा में भी किसी को मेरे द्वारा दुख न हो। मनसा में कैसे दुख दे सकते हैं, उनके लिए बुरा चिंतन करना, तो वाइब्रेशन तो पहुँचते ना उस तक तो पहुँचेंगे, इसीलिए मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख न हो। दूसरा, किसी भी परिस्थिति में क्रोध न आए, क्योंकि क्रोध से भी तो दुख होता है। मनसा से किसी को बुरा, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो भी उसको दुख होता है, वाचा से क्रोध करते हैं तो भी किसको दुख होता है। तीसरा, बाप का बनकर बाप के कार्य में इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप न बने, कोई ऐसा गलत काम न करे जो संस्था का नाम बदनाम हो, बाबा का नाम बदनाम हो, ब्रह्मा कुमारियों का नाम बदनाम हो, तो कर्म में भी सावधान रहना है। तो बाप का बनकर बाप के कार्य में इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप न बने। अगर कोई मुख से, अब ये भी सावधानी रखनी है, अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे, मुख से तो बाबा बाबा कहता है, और चलन रॉयल न हो तो ऊंच पद मिल नहीं सकता। अब पाना है ऊंच पद, उसके लिए बाबा बाबा भी कर रहा है लेकिन चलन रॉयल नहीं है, बोल ठीक नहीं है, कर्म ठीक नहीं है, तो बाबा कहते हैं ऊंच पद मिल नहीं सकता। ओम शांति। बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि बाप से वर्षा पाना है जरूर। कैसे? कैसे पाना है, क्या है आधार उसका, अगर वर्षा पूरा लेना है बाबा से श्रीमत पर पूरा वर्षा बाबा से पाना है। बाप ने समझाया है, एक ही गीता शास्त्र है जिसमें श्रीमत भगवान वाच है। भगवान तो सबका बाप है, श्रीमत भगवान वाच तो जरूर भगवान ने आकर श्रेष्ठ बनाया होगा, तब तो उसकी महिमा है। श्रीमत भगवत गीता अर्थात श्रीमत भगवान वाच। भगवान तो जरूर ऊंच से ऊंच ठहरा, श्रीमत भी उसी की उस ही एक शास्त्र में गाई हुई है। केवल गीता शास्त्र ये जिसमें श्रीमत भगवत गीता श्रीमत भगवान की गाई हुई है, और कोई शास्त्र में श्रीमत भगवान वाच नहीं है। श्रीमत किसकी होनी चाहिए? किसकी होनी चाहिए श्रीमत? केवल एक भगवान की। भगवान के सिवाय तो और किसकी श्रीमत नहीं कहेंगे ना। चलो बाबा को याद करते जब तक लाइट आए, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं श्रीमत किसकी होनी चाहिए, वो लिखने वाले भी समझ न सके। अब जिन्होंने श्रीमत भगवत गीता लिखी, वेद व्यास कहते हैं, उसको भी नहीं पता था कि आखिर श्रीमत है किसकी, भगवान कौन है। तो वो लिखने वाले भी समझ न सके, तो उसमें भूल क्यों हुई है? क्यों ये भूल कर दी जो बाप के नाम पर बच्चे का नाम डाल दिया? वो भी बाप आकर के समझाते हैं क्यों हुई भूल, क्यों वेद व्यास ने शिव बाबा की बजाय कृष्ण का नाम डाल दिया, तो क्या कारण था, क्या कारण होगा? तो बाबा कहते हैं, बाबा ने बड़ा राज समझाया है। बाबा कहते हैं कि रावण राज्य शुरू होने से ही रावण मत पर चल पड़े। अब रावण की मत थी, जिस रावण की मत ने नाम का परिवर्तन कर दिया, शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, तो ये रावण मत थी। तो रावण राज्य शुरू होने से रावण मत पर चल पड़ते हैं, तो पहले कड़े पे कड़ी भूल इस रावण मत वालों ने की। जो रावण की मत पर चल पड़े उन्होंने ये सबसे बड़ी कड़े पे कड़ी भूल की, जो शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। रावण की उनको चमाट लगती है, थप्पे लग जाती है रावण की। जैसे अब दूसरा कौन सा मिसाल है, दूसरा मिसाल बाबा कहते हैं, जैसे कहा जाता है शंकर प्रेरक है, शंकर प्रेरक है, बॉम्ब्स आदि बनवाए हैं शंकर ने, शंकर की तपस्या की, उसकी तपस्या से साइंटिस्ट को वैज्ञानिकों को बॉम्ब्स बनाने की युक्ति आई, तो शंकर ने ये सब किया है। तो बाबा कहते हैं वो जैसे वो कहते हैं कि शंकर प्रेरक है, बॉम्ब्स आदि बनवाए हैं, वैसे चलो उनके लिए तो कहते शंकर प्रेरक है, वैसे पांच विकारों रूपी रावण प्रेरक है मनुष्यों को पतित बनाने के लिए। जो मनुष्य इतने पावन थे वो पतित कैसे बने? रावण की प्रेरणा से दे अभिमान में आ गए और विकारों के वश हो गए तो पतित बन गए। तो बाबा कहते वैसे पांच विकारों रूपी रावण प्रेरक है मनुष्य को पतित बनाने का। तब तो पुकारते हे पतित पावन आओ, तो पतित पावन तो एक ही ठहरा ना। इससे सिद्ध है, क्या सिद्ध है? एक ही है पतित पावन। इससे सिद्ध है कि पतित बनाने वाला और है। शिव बाबा तो नहीं तो पतित बनाएगा, पतित बनाने वाला और है और पावन बनाने वाला और है। दोनों एक तो हो नहीं सकते। शिव बाबा तो पावन बनाता है, सुखी बनाता है, और रावण पतित बनाता है, दुखी बनाता है। तो दोनों एक तो नहीं हो सकते कि दोनों एक ही बना, पतित भी वही बनाए पावन भी वही बनाए। अलग अलग है, पावन बनाने वाला अलग, पतित बनाने वाला अलग। तो ये बातें तुम ही समझते हो नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे मत समझना। क्या नहीं समझना? कि सभी को ये निश्चय है, नंबर वार है। जितना निश्चय है उसकी निशानी क्या है? अगर निश्चय है कि भगवान हमें ये श्रीमद दे रहे हैं, इतना ऊंचा बना रहे हैं, तो उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी है कि खुशी बढ़ती जाएगी। अगर खुशी नहीं है तो समझो अभी बाबा में निश्चय की कमी है। तो खुशी बढ़ती जाती है। बाप की मत पर चलना होता है, तो अगर निश्चय है तो बाप की मत पर चलना होता है। खुशी नहीं है, हमारा निश्चय भी नहीं है। श्री मत पर हमको ये स्वराज्य पद पाना है। मनुष्य से देवता बनने में देरी भी लगती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, मम्मा बाबा को फॉलो करते हो, जैसे वो आप समान बनाने की सर्विस करते हो। बाबा मम्मा ने कितने को आप समान बनाया है। बाबा को देखते थे और बिल्कुल परिवर्तित हो जाते थे, मम्मा को देखते थे और एकदम बदल जाते थे। तो मम्मा बाबा ने आप समान बनाने की सर्विस की। तो मम्मा बाबा को फॉलो करते हो, जैसे आप वो आप समान बनाने की सेवा कर रहे हैं, तुम भी समझते हो हम क्या सर्विस कर रहे हैं और मम्मा बाबा क्या सर्विस कर रहे हैं। क्या हम भी मम्मा बाबा की तरह सर्विस कर रहे हैं? तो बाबा ने समझाया था कि शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं और दोनों कैसे निरंकारी है। दोनों इकट्ठे हैं तो समझना चाहिए कि सबसे नजदीक है ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा के सबसे नजदीक है। इनका ही संपूर्ण रूप, ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो जरूर ये तीखा होगा। ब्रह्मा बाबा तीखा होगा, इनका ही सूक्ष्म वतन में रूप है तो ये सबसे तीखा होगा। परंतु जैसे बाप निरंकारी है, शिव बाबा कितना निरंकारी है, आकर के कहते हैं मैं बच्चों को नमस्ते करता हूँ, झुकता है बाबा बच्चों के आगे, पैर भी नहीं छूने देता। परंतु जैसे बाप निरंकारी है, देही अभिमानी है, वैसे ये दादा भी निरंकारी है। कहते हैं कि शिव बाबा ही समझाते रहते हैं, ये मत समझो कि ब्रह्मा बाबा समझाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा निरंकारी बनकर ये कहते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं। जब मुरली चलती है तो बाबा खुद कहते हैं कि समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सुना रहे हैं। ये ब्रह्मा भी जरूर सुनता होगा, शिव बाबा ब्रह्मा के मुख द्वारा सुनाते हैं, सबसे पहले ब्रह्मा के कान सुनते हैं। ये ब्रह्मा भी जरूर सुनता होगा, ये न सुने और न सुनाए, अगर ब्रह्मा बाबा न सुने न सुनाए तो ऊंच पद कैसे पाए। जरूर ब्रह्मा भी सुनता होगा, पुरुषार्थ करता होगा, तभी तो ऊंच पद पाएगा, ऊंच पद नहीं तो कैसे पाए। परंतु अपना देह अभिमान छोड़, ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं कि हमेशा ऐसे समझो कि शिव बाबा ही सुनाते हैं। हाँ, कई कहते हैं ना, बहन जी आपने बहुत अच्छा सुनाया, हमने क्या सुनाया, तो शिव बाबा ने जो कहा वो सुनाया, हमने अपना तो कुछ नहीं सुनाया। तो बाबा कहते हैं हमेशा ऐसे समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं, हम पुरुषार्थ करते रहते हैं, शिव बाबा ही समझाते हैं, इसने तो पतितपना पास किया हुआ है। ब्रह्मा बाबा ने लौकिक में पतितपना पास किया हुआ है ना, गृहस्थी है ना, तो विकार तो सब होंगे, तो वह पतितपना पास किया हुआ है। मम्मा तो कुमारी थी, तो मम्मा ऊंच चली गई, ब्रह्मा बाबा से भी मम्मा ऊंच चली गई। ऐसे नहीं कहेंगे बाबा मम्मा, लेकिन क्या कहेंगे मम्मा बाबा, तो मम्मा आगे हो गई ब्रह्मा बाबा के, मम्मा भी चली गई। तुम भी कुमारियां मम्मा को फॉलो करो, गृहस्थियों को बाबा को फॉलो करना चाहिए। हर एक को समझना है कि मैं पतित हूँ, मुझे पावन बनना है। तो मुख्य बात बाप ने याद की, यात्रा की सिखलाई है, इसमें बे अभिमान नहीं आना चाहिए। अब क्या बे अभिमान कैसे आता है याद की यात्रा में? अच्छा, कोई मुरली नहीं सुना सकते तो याद की यात्रा पर रहो, यात्रा पर रहते मुरली चला सकते हो, यात्रा पर रहते मुरली चला सकते हैं, परंतु यात्रा भूल जाती है तो भी हर्जा नहीं। अब ज्ञान सुना रहे हैं उस समय बाबा की याद नहीं रहती है तो कोई हर्जा नहीं, कम से कम ज्ञान तो मुख से निकल जाए, तो इस तो बाबा कहते हैं तो कोई हर्जा नहीं, फिर मुरली चला कर फिर यात्रा में लग जाओ, ज्ञान सुना और फिर बाबा की याद में रहो, क्योंकि वो वाणी से परे वान परस तरसता है। बाबा की याद माना परमधाम में अपने आप को समझो, वो तो वाणी से परे स्थान है, वो तो उसमें आवाज में आने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ज्ञान सुना तो आवाज में आना होता है, फिर बाबा की याद में रहो। तो वाणी से परे वान परस तरसता है, तो मूल बात है देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो और चक्र को याद करते रहो, किसी को दुख नहीं दो, यही समझाते रहो कि बाप को याद करो, ये है यात्रा। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, अज्ञान काल में कोई स्वर्ग को याद नहीं करते हैं, ऐसे कोई स्वर्ग को याद नहीं करते हैं। क्यों नहीं याद करते ऐसे, क्योंकि क्यों नहीं याद करते, क्योंकि हम स्वर्ग स्वर्ग तब याद किया जाता है जब मरने की बात आती है, नहीं तो स्वर्ग को याद ही नहीं करते। क्योंकि स्वर्ग को याद करना माना यहाँ से मरना, हाँ स्वर्ग भी तब याद आए जब मरने की बात आती है, भगवान भी तब याद आए जब मरने की बात आती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो कोई याद नहीं करते, अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापिस जाना है। तो बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, वर्षा याद रहेगा, जितना बाप को याद करेंगे उतना हर्षित में रहेंगे। बाप को याद करने से मुंझते हैं, घुटका खाते रहते हैं, तुम इतना समय याद कर नहीं सकते। तो बाबा ने क्या युक्ति बताई है, जो हर वक्त बाबा की याद रहे, तुम याद नहीं कर सकते हो। तो बाबा ने आशिक मशूक का मिसाल दिया है, वो बहुत धंधा करते हैं, वो माशुद फल धंधा करता है और वो भी चरखा चलाती है, आशिक जो होगी वो चरखा भी चलाती है या कुछ भी करती है, तो भी उसके सामने माशूक आकर खड़ा हो जाता है। आशिक माशूक को याद करती है, माशूक फिर आशिक को याद करता है। अब यहाँ या माशूक याद नहीं करता आशिक को, आशिक याद जरूर करती है माशूक को। यहाँ तो सिर्फ तुमको एक बाप को ही याद करना है, वो सबका माशूक है। तुम बच्चे लिखते हो कि बाबा आप हमको याद करते हो, बाबा को पत्र लिखते थे, बाबा हम तो आपको बहुत याद करते हैं, आप हमको याद करते हो, पूछते अरे जो सबका माशूक है वो फिर तुम आशिकों को याद कैसे कर सकेंगे। सबको होल सेल में याद करते होंगे ना, एक एक इंडिविजुअल को तो याद नहीं करते होंगे। तो वहां तो एक ही आशुक एक ही आशिक एक ही माशुक है तो एक दो को याद करते, यहाँ तो कितने आशिक है बाबा के। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम आशिकों को याद कैसे कर सकेंगे, वो तो सबका माशुक है, वो है ही माशुक। आशिक तो बन नहीं सकता, वो आशिक नहीं बन सकता है जो किसी को खास याद करे। तुमको ही याद करना है, तुम हर एक को आशिक बनना है उस एक माशूक का। अगर वो आशिक बने, शिव बाबा अगर आशिक बने तो कितनों को याद करे, उनके आशिक तो बहुत है तो कितनों को याद करे, ये तो हो ही नहीं सकता। कहता है कि मेरे ऊपर पापों का बोझा थोड़ी है जो मैं किसको याद करूं, तुम्हारे ऊपर पापों का बोझा है, तुमको फिक्र होना चाहिए कि मुझे शिव बाबा को याद करना है तब पाप कटेंगे। तो मैं मेरे ऊपर कोई पापों का बोझा थोड़ी है जो मैं किसको याद करूं, तुम्हारे ऊपर बोझा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा नहीं उतरेगा, बाकी मुझे क्या किसको याद करना पड़े। याद करना है तुम आत्माओं को, जितना याद करेंगे उतना पुण्य आत्मा बनेंगे, पाप कटते जाएंगे। बड़ी मंजिल है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। ये नॉलेज सारी तुमको मिल रही है, तुम त्रिकालदर्शी बने हो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। तो बाप समझाते हैं तुम लाइट हाउस हो ना, हाँ लाइट हाउस की जो लाइट है ना वो घूमती रहती है ना, तो तुम लाइट हाउस हो ना, हर एक को रास्ता बताने वाले हो, शांति धाम और सुख धाम का, ये सब नई बातें तुम सुनते हो, जानते हो कि बरोबर हम आत्माएं शांति धाम की रहवासी हैं, यहाँ पाठ बजाने आते हैं, हम एक्टर हैं, यही चिंतन बुद्धि में चलता रहे तो मस्ती चढ़ जाए। बाप ने समझाया है आदि से अंत तक तुम्हारा पाठ है, अभी कर्मातीत अवस्था में भी जरूर जाना है, फिर गोल्डन एज में आना है, इस धुन में रहते अपना कल्याण करना है, इस धुन में रहना है, मुझे कर्मातीत बन के घर जाना है फिर सत्युग में आना है, इस धुन में रहते अपना कल्याण करना है। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, केवल औरों को सुनाने के लिए नहीं अपने को भी सुनाना है ना, सिर्फ पंडित नहीं बनना है, दूसरों को सिखाते रहेंगे और खुद उस अवस्था में नहीं रहेंगे तो असर पड़ेगा नहीं, दूसरे पर आपके बोल का असर पड़ेगा नहीं। अपना भी पुरुषार्थ करना है तो बाप भी बताते हैं कि हम भी याद करने की कोशिश करता हूँ, ब्रह्मा बाबा मैं तो पुरुषार्थ करते हैं, हम भी याद करने की पुरुषार्थ करता हूँ। कभी माया का तूफान ऐसा आता है जो बुद्धि का योग तोड़ देता है। अब ये ब्रह्मा बाबा साकार में अपना अनुभव सुनाते कि ऐसा माया का तूफान आता है जो बुद्धि का योग तोड़ देता है। बहुत बच्चे चाट भेज देते हैं, मैं वंदर खाता हूँ। ब्रह्मा बाबा वंदर खाते, चाट तो बहुत अच्छा लिखकर भेजते हैं कि बाबा मैं इतने इतने घंटे बाबा की याद में रहा, तो मैं वंदर खाता हूँ, ये तो हमसे भी तीखा चला गया। मेरा भी इतना चाट अच्छा नहीं है और इस बच्चे का चाट इतना अच्छा है, तो मेरे से भी ये तीखा चला गया। परंतु नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि ब्रह्मा बाबा से भी वो बच्चा आगे चला जाए। परंतु नहीं, वो सिर्फ चाट लिखने तक है। वो सोचेगा ना कि आज मुझे बाबा को चाट भेजना है, तो इसलिए मैं इतना वो अच्छी तरह से बाबा को याद करूं तो मैं अच्छा चाट बाबा को भेज सकूं, तो इसीलिए वो चाट के चक्कर में चलो उसका अच्छा योग होगा। तो बाबा कहते ऐसे हो ही नहीं सकता, वो चाट के कारण हुआ। तो ऐसे नहीं लिखते। हाँ चलो, फिर बाबा कहते चाट तो बहुत अच्छा लिखा कि बाबा आज मैं इतना याद में रहा, परंतु क्या नहीं लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते कि बाबा मैंने इतनों को आप समान भी बनाया, सेवा क्या की, वो नहीं लिखते हैं, केवल बस हाँ याद का चाट अच्छा भेजा। और वो भी लिखे जिसकी सेवा की, वो भी लिखे कि बाबा हमको इसमें बहुत अच्छा रास्ता बताया, तब बाबा उसको स्वीकार करे कि हाँ इसका योग का चाट भी अच्छा होगा, सेवा का चाट भी अच्छा होगा। तो जिसकी सेवा की वो भी लिखे बाबा को, ऐसा समाचार तो आता नहीं है, किसी का भी ऐसा समाचार नहीं आया। तो बाबा क्या समझेंगे, सिर्फ चाट भेजने से काम नहीं चलता है, आप समान भी बनाना है, रूप और बसंत दोनों बनना है, योग का भी चाट अच्छा हो और सेवा का चाट भी अच्छा हो, तो रूप और बसंत दोनों बनना है, नहीं तो बाप समान नहीं ठहरे। रूप भी बसंत भी एक्यूरेट बनना है, इसमें ही मेहनत है। बसंत बनना माना दूसरों की सेवा करना, ज्ञान सुनाना, इसमें ही मेहनत है। देह अभिमान मार डालता है, क्यों ये सब नहीं हो पाता है बच्चों से, बाबा कहते देह अभिमान मार डालता है। रावण ने देह अभिमानी बनाया है, अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, फिर आधा कल्प के बाद माया रावण देह अभिमानी बनाती है। देही अभिमानी तो बहुत मीठा बन जाते, अगर देही अभिमानी होंगे तो बहुत मीठे होंगे, हमारे वाणी में मिठास होगा। संपूर्ण तो अभी कोई भी बना नहीं है, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि किसी के भी दिल को रंज नहीं करना है, ऐसे कोई कड़वे बोल, ऐसे कोई गुस्से के बोल, डांट के बोल, बाबा कहते उसे रंज होगा, उसको दुख होगा, दुख नहीं देना है। सबको बाप का परिचय दो, बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए, ईश्वरीय संतान के मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, ज्ञान रत्न निकलने चाहिए ईश्वरीय संतान के मुख से। तुम मनुष्यों को जीवदान देते हो, रास्ता बताना है और समझाना है, तुम परमात्मा के बच्चे हो ना, उनसे तुमको स्वर्ग की राजाई मिलनी चाहिए, फिर अब वो क्यों नहीं है, राजाई अब क्यों नहीं है, तो याद करो बरोबर बाप से वर्षा मिला था ना, तुम भारतवासी देवी देवताएं थे, तुमने ही 84 जन्म लिए, तुम समझो कि हम ही लक्ष्मी नारायण कुल के थे, हमेशा यही समझो हम लक्ष्मी नारायण कुल के थे। अपने को कम क्यों समझते हो, पता नहीं हमें हम लक्ष्मी नारायण कुल के थे या नहीं, बाबा कहते ऐसा संशय क्यों लाते हो मन में, सदैव यही मेरे अंदर में समझो कि हम लक्ष्मी नारायण के कुल के थे। अपने को कम क्यों समझते हो, अगर कहते हो कि बाबा हम थोड़ी बनेंगे, ये हम थोड़ी ये बनेंगे, तो बाबा समझ जाएगा, क्या समझ जाएगा, अगर कोई बच्चा कहता है मैं ऐसे थोड़ी बन सकता हूँ इतना ऊंचा, तो बाबा समझ जाएगा कि ये स्कूल का नहीं है, ये स्कूल का सूर्यवंशी कुल में आएगा या नहीं चंद्रवंशी में जाएगा, अगर वो कहता है कि मैं कैसे बनूंगा। अभी से ही थिरकने लग पड़ा है, थिरकने लग पड़ा माना जैसे पांव उखड़ गया उसका, जैसे पीछे हट रहा है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, बाप ने 21 जन्मों की प्रालब्ध जमा कराई, वो खाया फिर ना होना शुरू हो गई। हाँ, वो खाया, अभी मिल रही है, जमा कर रही है, फिर धीरे धीरे खाना शुरू करेंगे सत्युग से लेकर जो कमाई अभी कर रही है, फिर धीरे धीरे वो समाप्त होने लगेगी। कट चढ़ते चढ़ चढ़ते तमो प्रधान कौड़ी मिसल बन पड़े हो, भारत ही 100% सॉल्वेंट था, उनको ये वर्षा कहाँ से मिला? एक्टर्स ही तो बता सकेंगे ना, हाँ, कि कैसे ये वर्षा मिला जो एक्ट करते हैं। मनुष्य ही एक्टर है, उनको ये पता होना चाहिए कि इन लक्ष्मी नारायण को बादशाही मिली कहाँ से। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स है, जरूर आगे जन्म में ही ये राज्य भाग्य पाया होगा, लक्ष्मी नारायण ने पिछले जन्म में ही ये राज्य भाग्य पाया होगा। तो बाप ही पति पावन है, बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। रावण राज्य में मनुष्य के कर्म विकर्म हो जाते हैं और वहाँ सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं, वो है दैवी सृष्टि। मैं रचयिता हूँ तो जरूर मुझे संगम पर आना पड़े, ये है रावण राज्य और वो है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर अब स्थापना करा रहे हैं, तुम सब ईश्वर के बच्चे हो, तुमको वर्षा मिल रहा है। भारतवासी ही सॉल्वेंट थे, अब इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं, ये बना बनाया ड्रामा है। हाँ, क्यों शब्द नहीं आता, बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क नहीं हो सकता। सबका झाड़ अपना अपना है, हर धर्म की डाली अपनी अपनी है, वैरायटी झाड़ है ना। देवता धर्म वाले ही फिर देवता धर्म में आएंगे, क्रिश्चियन धर्म वाले अपने धर्म में खुश है, औरों को भी अपने धर्म में खींच लिया है, दूसरे धर्म वालों को भी अपने धर्म में क्रिश्चियन धर्म ने खींच लिया है। भारतवासी अपने धर्म को भूलने के कारण वो धर्म अच्छा समझ चले जाते हैं, हिंदू ऐसे ही करते हैं, वो धर्म अच्छा है वहां चले गए। हाँ, परंतु वो धर्म वाले जो पक्के होते कट्टर, वो कहते नहीं नहीं हम कोई और धर्म में नहीं जाएंगे, तो क्योंकि और धर्म अच्छा लगा तो चले जाते हैं। विलायत में नौकरी के लिए कितने जाते हैं, और विलायत में गाय खे खास अमेरिका ये यूरोप तो वहां तो सब क्रिश्चियन है, तो फिर वही सभ्यता अपना लेते हैं, फिर अपने को कई बार तो फिर कन्वर्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि वहां कमाई बहुत है तो वहां चले जाते हैं। ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। हाँ, फिर बाबा कहते हैं अंत के समय सबको वापस आना है, सबको वापस आना है, वापस अपने अपने धर्म में आना ही है, अपने अपने देश में आना ही है। अंत में तो यही ना, हमारे डबल विदेशी भी कहते हैं कि अब तो यही रह जाए, कहीं तो कहते अब जाने की वापस जाने की दिल ही नहीं होती है, तो हम कहते नहीं वहां जाके तुमको सेवा करनी है, तो भले कई दिनों से यहाँ पर है क्योंकि अभी तक उनकी फ्लाइट नहीं हुई है क्योंकि मिडिल ईस्ट से है, लेकिन कहते हम खुश है वो जब भी मिले, इसीलिए हमको कोई कहेगा तो नहीं कि जाओ क्योंकि फ्लाइट ही नहीं है, तो खुश है। हाँ, खुश है ना डबल विदेशी, खुश है ना सभी, जो खुश है डबल विदेशी हाथ उठाओ, देखो सब हाथ उठा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, इसको समझने की अच्छी बुद्धि चाहिए, विचार सागर मंथन करने से सब कुछ समझ में आ जाता है। ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। तो तुम बच्चों को आप समान सदा सुखी बनाना है, ये तुम्हारा धंधा है। पतितों को पावन बनाना, जैसे बाप का धंधा वैसे तुम्हारा। तुम्हारा मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित होना चाहिए। देवताओं के चेहरे कितने हर्षित है, तो हमारा चेहरा भी सदा देवताओं जैसा हर्षित होना चाहिए खुशी में। तुम जानते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं। तुम हो, बड़ा प्यारा बाबा ने टाइटल दिया बच्चों को, तुम हो लवली चिल्ड्रन। कौन है? हम सब लवली चिल्ड्रन, प्यारे बच्चे। क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बाप आए हैं बच्चों को सुख का वर्षा देने, स्वर्ग का रास्ता सबको बताना है। बाप सुख करता दुख हरता है, तो तुमको भी सुख करता बनना है। किसको दुख नहीं देना है, दुख देंगे तो बाबा क्या कहते हैं, तो तुम्हारी सजा 100 गुना बढ़ जाएगी। कोई भी सजा से बच नहीं सकता। बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठेगी, अष्टरत्न बैठेंगे उस ट्रिब्यूनल में सुप्रीम जज के साथ। बाप कहते हैं तुम विघ्न डालेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। कल्प कल्पांतर तुम साक्षात्कार करेंगे कि फलाने ये बनेंगे। हाँ, दास दासी जाके बनेंगे, चंडाल बनेंगे, तो कल्प कल्पांतर की वो बाजी हो जाती है और अंत में सबको साक्षात्कार भी होगा कि ये फलाना बनेगा। आगे जब देखते थे तो बाबा मना करते थे कि नहीं सुनाओ। ये क्यों बाबा कहते? तो उस समय यज्ञ में थे ना, तो साक्षात्कार बहुत होते थे। अब जो ऊंच बनने वाली है और दूसरी तो व्यासदासी बनने वाले, तो वो पहले से उनको पता चल जाता है कि ये दासी बनेगी। तो वो कहती थी कांता कांता, उस कांता, वहां दासी को कांता कहते हैं, तो उसको कांता कांता बुलाती थी। तो वो बिचारी जो थी जिसको कांता बुलाया उस शहजादी ने, तो उसको तो मुरझा जाती थी, तो क्या मैं सचमुच में कांता बनूंगी, मैं दासी बनूंगी? तो फिर बाबा ने क्या किया, ये जो पार्ट है उसका वो बंद करा दिया, क्योंकि वहां तो उनको सच को दिखाई देता था ना, उनका भविष्य का पार्ट। तो देखो बाबा कहते हैं, तो बाबा मना करते थे कि नहीं सुनाओ, अंत में तो एक्यूरेट मालूम पड़ जाएगा, अंत में सबका पता चल जाएगा कौन सा पद पाएंगे। आगे चलकर जोर से साक्षात्कार होंगे, जोर से साक्षात्कार होंगे, वृद्धि तो होती जाएगी। आबू तक क्यों लग जाएगी? साकार मूल्यां है ये, आबू तक क्यों लग जाएगी? लग जाती ना, जब ऊपर आते हैं तो पूरी देखो गाड़ियां ही ब्रह्मा कुमारियों की, बसें देखो, गाड़ियां, कार देखो, शिव बाबा का झंडा लगा हुआ है। आबू तक क्यों लग जाएगी? बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे। चलो चार धाम की यात्रा करने आते हैं अभी, तो कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला, ये भी गाया तो हुआ है ना। कई आते ना, पुराने आते हैं, याद करते हैं, कोई तो बाबा मामा को याद करते, कोई दादियों को याद करते हैं, दादियां कैसे आगे बैठती थी, सबका आह्वान करती थी, सबका कैसे स्वागत करती थी। तो भी अभी तो फिर रूप ही दूसरा है। तो बाबा कहते हैं हाँ, कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला, तो ये भी गाया हुआ है ना, विद्वान पंडित आदि भी पीछे आएंगे, वो भी आएंगे, उनों के सिंहासन भी हिलेंगे, तुम बच्चे तो बहुत खुशी में रहेंगे, खुशी में। अच्छा, अभी बाबा का याद प्यार देखो, बहुत लंबा चौड़ा है। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार। फिर याद प्यार कहके बाबा ने फिर और आगे बताया, ऐसी याद प्यार एक ही बार मिलती है, जो भगवान हमको याद प्यार देते हैं ये एक ही बार हमें मिलता है। जितना तुम याद करते हो उतना तुम प्यार पाते हो। तुम याद जितना बाबा को करते हो उतना बाबा का प्यार पाते हो। विकर्म विनाश होते हैं और धारणा भी होती है, तो बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। जो भी आए उनको रास्ता बताएं। बेहद का वर्षा बेहद के बाप से पाना है, कम बात है क्या? ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर याद प्यार मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है, मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, आप समान बनाने की सेवा करनी है, किसी की दिल को रंज नहीं करना है। दूसरा, क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है, मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित रखना है, स्वयं को ज्ञान योग बल से देवता बनाना है। वरदान, पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मुहूर्त भव। पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मुहूर्त भव। जैसे दर्पण में के आगे जो भी जाता है, दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं है तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। कई बार तो मिरर में डिफेक्ट होता है, तो अभी चेहरा तो साफ होगा लेकिन मिरर में डिफेक्ट है तो लगता है जैसे दाग दाग है। और कई बार देखो बाबा कहते हैं होगा पतला और दिखाई देगा मोटा, जैसे भी होते ना शीशे होते हैं उसको फन रूम कहते हैं, मन अंदर जाओ और हंसते रहो, क्योंकि जो शीशे होते हैं मिरर होते हैं, किसमें इतने मोटे दिखाई दोगे, इसमें इतने लंबे दिखाई दोगे, किसमें एकदम दुबले पतले दिखाई दोगे, तो इसलिए अलग अलग चेहरा हो जाता है, तो इसलिए हंसते रहते हैं। तो होगा पतला दिखाई देगा मोटा, इसीलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, अर्थात आपके सामने आते ही उनका देह भान, आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाए। आप भी उसी देही रूप में स्थित हो और आपको देख वो भी देही रूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस यही है, इसी से जय जयकार होगा। स्लोगन, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बात में तो निश्चय है लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो तो फिर विजय ही विजय है। विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं है, वो समस्या नहीं फील होगी। अब विजयी हो गए, कितनी विघ्न आए कुछ भी समस्या आई पूरा हो गया, अभी विजयी बन गए, तो फिर वो विजयी है तो भूल गए सब कुछ, फिर वो समस्या नहीं फील होगी लेकिन खेल फील होगा। खेल तो खुशी से किया जाता है, कोई कार्य सहज होता है तो कहा जाता है ना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अर्थात सहज है, तो ये भी बुद्धि का खेल हो जाएगा। खेल में घबराएंगे नहीं क्योंकि निश्चय है ना कि विजय होनी ही है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज तो हमने मुझे बताया गया कि मोहिनी दीदी जी आ रहे हैं ऊपर, तो कुछ दिनों से प्रोग्राम बना था, आज 19 तारीख मोहिनी दीदी जी को आना है और शांति स्तंभ पर आकर के योग कराएंगे। अब मौसम भी देखा जाएगा, अगर
दोपहर को फाइनल बताएंगे।
हाँ, दोपहर को फाइनल बताएंगे कि मौसम अनुसार मोहिनी दीदी आएंगे या नहीं। तो अगर मोहिनी दीदी आएंगे तो फिर डबल विदेशी जो ज्ञान सरोवर में है वो भी यहाँ ही आएंगे तो शांति स्तंभ पर बैठेंगे, लेकिन ये सब दोपहर को बताया जाएगा। फिर तो जो डबल विदेशी होंगे जो ज्ञान सरोवर से भी, क्योंकि वहां भी बहुत आ गए हैं, फिर वो आकर के शांति स्तंभ पर बैठेंगे अंदर और मोहिनी दीदी आएंगे, तो इसलिए दोपहर को ही बताएंगे। तो डबल फॉरेनर्स, देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस फॉर यू। प्लीज दोज हु अराइव्ड यस्टरडे शुड सबमिट देयर गवर्नमेंट फॉर्म सी टू द डिपॉजिट ऑफिस आफ्टर ब्रेकफास्ट। All double foreigners need to ensure the office has your correct room number. You may deposit your valuables in the office to keep them safe. And second, double foreigners badge. Those who have not yet collected the double foreigners badge may collect their badge from deposit office between 9 and 11 a.m. and 12:30 to 2 p.m. Please keep your badge safe for the full duration of your stay. Do not get them wet or soiled. Badges are checked regularly by the security staff at the main gates and dining halls. And please look after your health during this change of weather. I'm sure you must have got your woolens. Please put them on. You never know the weather here. And today's program, 9:30 to 10:30, Didi Sudesh meeting new arrivals in meditation hall of Gyan Sarovar. And 9:30 to 10:30 a.m. journaling for first timers by Brother Mark of UK in training center room number 3 of Gyan Sarovar. 9:30 to 10:30, Sister Rajni meeting center Nivasis in training center room number 1 of Gyan Sarovar. Tamil class 9:30 to 10:30 by Brother Shankar in training center room number 8 of Gyan Sarovar, open to all Tamil speaking VKs. And 9:30 to 10:30 again, Sister Hemlata will meet all those from Thailand and Singapore in Daddy's cottage upstairs, Gyan Sarovar. Again 9:30, so many programs at 9:30. Personal meeting with Sister Mani of UK, open to everyone, anyone you know, would like to meet her. In Harmony House entrance meeting room. Then general class, 10:30 to 11 meditation and 11 to 12:15 session by Sister Usha. Usha Ben of Shantivan, she will come up and she will be interviewed by Sister Jassu of UK on the topic of the Bhagavad Gita, Timeless Revelations for Every Culture. Bhagavad Gita, Timeless Revelations for Every Culture. Usha Ben will speak on it in the Harmony Hall of Gyan Sarovar. And 12:30 to 1, Didi Sudesh will meet all those from Canada in Dadi's cottage, Gyan Sarovar. Then 4:30 buses leave to Pandav Bhavan and then assemble in the courtyard and visit different departments of Pandav Bhavan. And 6:00 you can come to the Tower of Peace and Yog Bhatti with Didi Mohini. And then 7:30 onwards, those who have come from Gyan Sarovar will return to Gyan Sarovar. And this will be all put up on the notice board of opposite History Hall. You can look at it again. And you can also have it on your smartphone through the QR code. Om Shanti.
Om Shanti. Aaj Satguruvar hai. साथ साथ भारतीय कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष भी है। भारतीय मान्यताओं के अनुसार कई स्टेट्स में नवरात्रि मनाते हैं और कई स्टेट्स में वसंत का त्योहार मनाते हैं और बहुत खुशियां मनाते हैं और कई स्टेट्स में तो बहुत प्रकार से सेलिब्रेशन करते हैं। हम बाबा के बच्चों के लिए हर कदम हर सेकंड सेलिब्रेशन है, उत्सव है। बाबा कहते हैं बाबा के बने, बाबा ने अपना बनाया, बच्चों के लिए हर सेकंड हर दिन उत्सव ही उत्सव है, खुशी ही खुशियां हैं और सदा खुशी के माहौल में रहना है। बाबा भी सब बच्चों को जो बाबा के प्यार में खुशियों में नाचते रहते हैं, बाबा भी उनको बहुत प्यार से बधाइयां देते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। बाबा कहते हैं ये मेरे कितने लाडले बच्चे हैं जिन्होंने केवल बाबा को पहचाना और अपना कल्प पहले वाला जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। तो आज के दिन बाबा की तरफ से और सबकी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। शुभकामनाओं के साथ सदा खुशियों में नाचते रहे और बाबा का हाथ पकड़ करके खुशी खुशी झूमते रहे। तो आज गुरुवार भी है, हम सब मिलकर के वतन में बाबा के पास जाएंगे और बाबा को अपना प्यार भरा प्रॉमिस बताएंगे कि बाबा हम हर समय नया संकल्प और सदा खुशियों में ही झूमते रहेंगे, नाचते रहेंगे। तो कौन कौन वतन में जाएंगे हाथ खड़ा करो, जो बाबा के पास जाएंगे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। आज का दिन भी शुभ है, प्यारे बाबा का दिन है, गुरुवार है और साथ साथ कई भाई बहनों ने ये भी कहा था आज हमको बाबा को भोग लगाना है। तो जिन्होंने भोग के लिए खास शुभ संकल्प किया है शांतिवन से आए हैं और वे सब के सब जो है भोग के टाइम अपना शुभ संकल्प बाबा को सुनाना है और बाबा ही आपके शुभ संकल्पों का उत्तर देंगे। तो सबको जाना है, भोग पूरा होने के बाद 5 लाइन में अमृत होगा, 1 लाइन भाइयों की उस तरफ होगी और 2 लाइनें होंगी, डबल 2 लाइन्स विल बी फॉर डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। प्लीज ऑल द डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स रेज योर हैंड। ओके, ब्रदर फॉरेन ब्रदर्स विल कम टू दिस साइड फॉर नेक्टर, फॉरेन सिस्टर्स विल कम टू दिस साइड नियर द कैमरा फॉर नेक्टर। शिली बहन विल गिव नेक्टर टू ऑल द डबल फॉरेन ब्रदर्स एंड अदर सिस्टर टू सिस्टर्स। और बाकी सभी का 2 लाइनें होंगी अमृत पीने के लिए। और जो भाई बहने शांतिवन से आए वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, वैसे तो नीचे भी बहुत बड़ा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, चारों तरफ से बहुत से बाबा के बच्चे और कई स्टेट से बाबा के बच्चे आए हैं और यहाँ पर भी कुछ आए हैं। तो आप सबको बता दें सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता है, नीचे कोई भी नहीं करेगा क्योंकि नीचे स्थान बहुत लिमिटेड है, सबको ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में जाना है। और अभी हम सब चलते हैं बाबा के पास, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे फिर वह सबको सुनाया जाएगा। उसके बाद 5 लाइन में अमृत होगा, 1 लाइन भाइयों की, 2 लाइन्स फॉर डबल फॉरेन ब्रदर, 1 लाइन फॉर डबल फॉरेन ब्रदर दिस साइड इन द मिडल ऑफ दिस प्लेस एंड 1 लाइन फॉर डबल फॉरेन सिस्टर्स नियर टू द कैमरा। बाकी 2 लाइनें अन्य बहनों की होंगी, सभी ध्यान देंगे। ओम शांति। अब निवासी भाई बहने ध्यान देंगे, यहाँ ओम शांति भवन में अमृत पीने के बाद अब निवासी भाई बहने फ्रूट डिपार्टमेंट झोंपड़ी के पास केवल अब माउंट आबू के अब निवासी शांति वन के अब निवासी नहीं या ज्ञान सोर के अब निवासी नहीं, माउंट आबू के जो आबू के अब निवासी भाई बहने जो यहाँ क्लास करने आते वह झोंपड़ी के पास फ्रूट डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, गीता बहन आपसे मिलेगी। ओम शांति।
बाबा के पास जा, हो के मगन।
हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते
शक्ति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी बहुत ही स्नेह भरी खुशियां भरी याद प्यार लेके बाबा के पास वतन में पहुंची। जैसे मैं वतन में पहुंची, आज तो वतन में बहुत से भाई बहने बाबा के सामने थे, और बाबा के सामने अनेक भोग के थालियां बाबा के सामने रखी हुई थी। बाबा सब प्रकार के भोग की थालियों को बहुत प्यार भरे दृष्टि से देख भी रहे थे। बाबा ने कहा आज तो वतन में 56 प्रकार तो क्या, उससे कई अधिक प्रकार के व्यंजन बच्चों ने भिन्न भिन्न स्थानों से अपनी मान्यताओं के अनुसार लगाने के लिए भेजे हैं। बाबा देख के मुस्कुरा भी रहे थे। बाबा सब बच्चों को देखते हुए सबको कहा आओ बच्चे, सब प्रकार के विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को देखो और भविष्य में तो आपके सामने विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी होंगे। प्रकृति और सब कुछ बच्चों को सलाम करेगी और आपके साथ हर कार्य में ऑर्डर से चलेंगे। तो बाबा ने क्या किया, सब व्यंजनों के भोग के प्लेट से ऐसे हाथ लगाया तो सबके पास वो भिन्न भिन्न प्रकार के भोग के प्लेट सबके पास पहुंचती गई और बच्चे जो इतना खुश खुशी में नाच रहे थे और खुद पटापट खाने लगे। तो मैंने कहा बाबा आपको तो भोग स्वीकार अभी मैं करा रही हूँ। बाबा ने कहा बच्चों को बाप को भोग स्वीकार कराना, तो सब खुश हो गए। आज हम बाबा को भोग स्वीकार कराते, हर एक अपने अपने अभी प्लेट्स को देख ही रहा था तो सब बच्चे ऐसे बाबा के पास अपने हाथ से ऐसे बाबा को खिलाने लगे। लेकिन बाबा इतनी पावरफुल दृष्टि देते हुए उस भोग के रिटर्न में बच्चों के पास कुछ न कुछ वरदान पहुंच रहे थे और उन वरदानों से वे खुशियों में बहुत ऐसे उमंग उत्साह में दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा बाबा यही चाहते हैं बच्चे हर परिस्थिति में हर बात में खुशियों में ही नाचते रहे और परिस्थितियों के बारे में ज्यादा न सोचे। फिर मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने सब बच्चों के पास ऐसे फैसे करते हुए अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया। तो बच्चों को पूछा बच्चे सब संतुष्ट हैं बाबा के सामने, तो सब कहते हाँ बाबा जी बाबा हम संतुष्ट हैं। बाबा ने कहा और प्रकृति या कोई भी परिस्थिति परीक्षा ले तो पास होंगे, कहा बाबा आपका साथ है। तो बाबा ने कहा बधाई हो और इस लक्ष्य में सदा सफल रहे। फिर बाबा ने कहा आज वतन में इतने बच्चे आए हैं, सब बच्चे आए हैं, बाबा बच्चों को कोई गिफ्ट देंगे। तो जैसे गिफ्ट का नाम लिया तो बच्चे तो तालियां बजा के नाचने लगे, खुश होने लगे। तो सबके पास एक छोटा सा बॉक्स पहुंचता था और वो बॉक्स पहुंचा, बॉक्स तो बहुत सुंदर था, चारों ही तरफ इतनी सुंदर सजावट थी। और बाबा ने कहा इस बॉक्स को खोलो, खोलने से पहले बच्चे उस सजावट को ही देख रहे थे। बाबा ने कहा ये जो सजावट है आप बच्चों का गुण और ज्ञान के रत्नों से सजावट है, तो वो आप सबको अपना अपना उस सजावट का अनुभव करना है कि बाबा ने बच्चों का कितना श्रृंगार किया है और ये अविनाशी श्रृंगार है। फिर उसको जब खोलने का आता है तो उस खोलने के बटन के ऊपर लिखा हुआ था
बाप में अटूट निश्चय। तो जैसे बच्चियों को खोलते थे, कभी कभी वो निश्चय डावनडोल होता था, तो बाबा ने कहा फिर से बाबा को अपना पक्का साथी बनाओ। जैसे वो उसको लक्ष्य में होके वो खुल गया, और खुलते ही उसमें इतना सुंदर चमकता हुआ एक फूल था, और उस फूल के अंदर बीच में था सर्वशक्तिवान बाप साथी। फूल के बीच में लिखा हुआ था, और उसके साथ में चार आठ पंखड़ियां थी, और आठ पंखड़ियों के साथ अलग अलग ढेर पंखड़ियां थी। तो बाबा ने कहा ध्यान से देखो, तो किसी की पंखड़ियों में चार में लाइट जल रही थी, किसी की दो पंखड़ियों में लाइट जल रही थी, किसी के छह, ज्यादा आठ कोई नहीं था। फिर उसके बाहर की जो पंखड़ियां थी, किसी के कुछ लाइट जल रही थी। बाबा ने कहा ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है। फिर बाबा ने याद दिलाया कि सर्वशक्तिवान के बच्चे सर्वशक्तिवान भव। तो ये जैसे बीच में लिखा हुआ था, फिर जैसे उस समिति में रहते थे वो सारी पंखड़ियां लाइट से जगमगाने लगी, उसकी लाइट चारों तरफ फैलती थी, चारों ही तरफ जो कभी प्रकृति कभी परिस्थिति की जो छाया थी वो छाया के रूप दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो लाइट का जो रूप था पहुंचते ही वो सब छाया एक सेकंड में गायब होके लाइट ही लाइट दिखा रही थी। बाबा ने कहा बच्चों के सामने वर्तमान समय कई प्रकार की परिस्थितियां विश्व की तरफ से, प्रकृति की तरफ से, स्वयं की तरफ से, और दुनिया में कई प्रकार की परिस्थितियां बच्चों के सामने समय प्रति समय आती हैं। तो बच्चे कभी कभी उन परिस्थितियों में घबरा जाते हैं, और उसके चिंतन में ज्यादा टाइम लगाते हैं। बाबा ने कहा कि बाबा ने पहले से ही बच्चों को कई इशारे दिए हुए हैं, समय ऐसा आएगा वह आप बच्चों को मजबूत करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए। तो अभी बच्चों को पुरुषार्थ के साथ साथ अपनी आंतरिक स्थिति को सर्वशक्तिवान बाप के साथ लगा के सर्वशक्ति संपन्न बनना है। जब स्थिति का बीच बीच में प्रयोग करेंगे तो विघ्न प्रूफ बनेंगे, और माया भी बच्चों के सामने, समय आने वाला है कि बच्चों के सामने झुकेगी और नमस्कार करेगी, ऐसा बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को अभी ज्यादा चिंतन में ना जा करके अपनी स्थिति को इतना पावरफुल बनाना है। बाबा ने कहा कि आप देख रहे हैं साइंस के साधन अपनी विनाशकारी पावर से कितना कुछ करते जा रहे हैं, लेकिन बच्चों की जो साइलेंस की शक्ति है उसका प्रयोग साइंस की शक्ति के भेंट में कम है। तो इसलिए बच्चों को साइलेंस की शक्ति में ज्यादा प्रयोग करते हुए उस सब बातों से किनारा, और अनेक प्रकार के विस्तार से अपने को समेटना है। फिर बाबा सबको बहुत प्यार कर रहे थे। फिर बाबा को मैंने बताया, बाबा आज तो कितने बच्चों ने अपने मन की भावनाएं भोग के रूप में बाबा के पास भेजी हैं। बाबा ने कहा बाबा ने पहले से ही उनको वतन में इमर्ज किया है। फिर से जिन्होंने भोग के लिए अपने शुभ भावनाएं भेजी थी, बाबा ने फिर से उनको इमर्ज किया। इमर्ज करते हुए कहा, बच्चों का प्यार भावनाएं बाबा के पास पहुंची हैं और बाबा ने बच्चों के प्यार की भावनाओं का रिटर्न उनको दे दिया है। फिर भी बाबा कहते, बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, कोई भी बात है बाबा से डायरेक्ट करो, उसके लिए अपनी बुद्धि को क्लियर और क्लीन रखो। सर्वशक्तिवान बाबा के साथ संबंध जोड़ के शक्तियों का समय अनुसार प्रयोग करना है, उसके लिए अपनी स्थिति का भी बैलेंस रखना है। परिस्थितियों के मनन में ज्यादा ना जा करके, चिंतन में ज्यादा ना जा करके, बाबा का साथ सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, इसलिए निश्चिंत और विजयी हो करके चले। बाबा यही बच्चों को बार बार बताते रहते हैं और सबको याद दिया। ओम शांति।